दिन भर, तारीख 31 जुलाई दिन शुक्रवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। आज की रात भारत और बांग्लादेश के बीच रचा जाएगा इतिहास, अदला बदली होगी एक दूसरे के इलाकों की, मिलेगी दो देशों के बीच फंसे लोगों को उनकी पहचान।
जिहाद नाम क्या?
लीबिया में अगवा किए गए चार भारतीयों में से दो हुए रिहा। हिंदी कथा कहानियों के पुरोधा मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन पर याद करेंगे उन्हें। सवाल ये कि क्या वो वामपंथी लेखक थे, उनके पुत्र कहते हैं।
उनके लेखन का अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ लोगों को सचेत करने की, ये कहना तो गलत है कि प्रेमचंद वामपंथी लेखक है।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। आज मध्य रात्रि को बांग्लादेश और भारत 162 एनक्लेव्स की अदला बदली करेंगे, जिससे दुनिया का सबसे जटिल सीमा विवाद खत्म हो जाएगा। भारतीय संसद ने हाल ही में बांग्लादेश से भूमि सीमा समझौता विधेयक को स्वीकार किया था। इसके तहत भारत में मौजूद 111 सीमांत एनक्लेव बांग्लादेश में चले जाएंगे और 51 भारत में शामिल हो जाएंगे। इससे करीब 50,000 लोगों की दूसरे देश की सीमा से घिरे होने के कारण कहीं का भी ना होने की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लीबिया में अगवा किए गए चार भारतीयों में से दो को सुरक्षित सिर्त यूनिवर्सिटी में लाया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विदेश मंत्रालय बाकी दो भारतीयों की रिहाई के प्रयास भी कर रहा है। कल भारत के चार नागरिकों को लीबिया के शहर सिर्त से अगवा किया गया था। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में एक बम विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मैदुगुरी शहर में भीड़ भरे सब्जी बाजार में एक टैक्सी में यह बम विस्फोट हुआ। सुरक्षा बलों को शक है कि पूर्व निश्चित जगह पर पहुंचने से पहले ही यह विस्फोट हो गया, जिससे टैक्सी में बैठे 3 लोग और अन्य 2 मारे गए। अभी तक किसी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, हालांकि चरमपंथी गुट बोको हराम मैदुगुरी शहर को अपना निशाना बनाता रहा है। जिम्बाब्वे ने अमेरिका से उस डेंटिस्ट के प्रत्यर्पण की मांग की है जिस पर सिसिल नाम के मशहूर शेर को मारने का आरोप है। सिसिल जिम्बाब्वे के चिड़ियाघर में एक संरक्षित शेर था और देश भर में काफ़ी मशहूर था। जिम्बाब्वे के पर्यावरण मंत्री ओपा मोचिनगुरी ने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा कि मिनेसोटा में रहने वाले वॉल्टर पामर एक गैरकानूनी शिकारी हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के अधिकारी उन्हें पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि वे विदेशी हैं।
Unfortunately, it was too late to apprehend the foreign.
बदकिस्मती से उस विदेशी शिकारी को पकड़ने में बहुत देर हो गई क्योंकि वह अपने देश जा चुका था। इसलिए हम संबंधित अधिकारियों से अपील करते हैं कि उसे जिम्बाब्वे को सौंप दें ताकि उसे उसके गैरकानूनी काम के लिए दोषी ठहराया जा सके। ये थे ओपा मोचिनगुरी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। चार्ड की सेना का कहना है कि चार्ड झील के द्वीपों और आसपास के इलाके में पिछले 2 हफ्तों से हो रही लड़ाई में सेना के चरमपंथी गुट बोको हराम के करीब 100 से ज़्यादा लड़ाकुओं को मार दिया गया है, लेकिन इस दावे का कोई स्वतंत्र पुष्टिकरण नहीं आया है। बोको हराम ने शुरुआत उत्तर पूर्वी नाइजीरिया से की थी, लेकिन अब ये इस क्षेत्र के कई देशों में सक्रिय है। कल चार्ड की संसद में चरमपंथी गतिविधियों के लिए मृत्युदंड को फिर से बहाल कर दिया गया, हालांकि विपक्षी पार्टियों और नागरिक अधिकार संस्थाओं ने इसकी आलोचना की है। चीन की राजधानी बीजिंग को वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। बीजिंग ऐसा पहला शहर होगा जिसे ग्रीष्म और शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मौका मिलेगा। शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए बीजिंग और कजाकिस्तान के शहर अल्माटी में कड़ी प्रतियोगिता थी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और इसकी मोबाइल साइट पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। आज की रात भारत और बांग्लादेश के बीच एक नया इतिहास रचा जाएगा। इतिहास इस मायने में कि दोनों देशों की सीमाओं का एक हिस्सा फिर से परिभाषित किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसद ने बांग्लादेश में भूमि सीमा समझौता विधेयक स्वीकार किया, जिससे कि 1947 के भारत विभाजन के समय से चली आ रही समस्या खत्म हो सकती है। इस समझौते के तहत भारत में मौजूद 111 सीमांत इनक्लेव बांग्लादेश में चले जाएंगे और 51 भारत का हिस्सा बन जाएंगे। साथ ही इससे दूसरे देश की सीमा में चारों ओर से घिरे इलाकों में रहने वाले लगभग 50,000 लोगों की अनिश्चितता खत्म हो जाएगी। भारत के चार राज्य इससे प्रभावित होने वाले हैं। सीधे कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं शकील अख्तर को, जो कि उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शकील साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, आप कहां पर हैं और क्या देख पा रहे हैं?
देखिए, यहां पे जो समारोह है, यहां पर एक एनक्लेव है जिसका नाम मशाल बांगला, ये एनक्लेव में से है और यहां पर ही समारोह रखा गया है। काफी लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। बिजली नहीं होती तो जनरेटर इंतजार किया गया है। एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम की बड़ी सी तस्वीर, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लगी हुई है। यहाँ कुर्सियां लगी हुई है, लोग रंग बिरंगे कपड़ों में यहाँ आए हुए हैं और कुछ वक्ता जो बंगाली भाषा में पर अपनी बोलना उन्होंने शुरू किया है।
तो ये भारतीय समय के मुताबिक रात 12 बजे कार्यक्रम अपने, ये 12 बजे का समय तय किया गया है।
ये 12 बजे का समय इस हिसाब से है कि जैसे ही 1 तारीख होगी, 1 अगस्त, उस वक्त से ये एनक्लेव जिस पर इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस वक्त ये अगर आप देखें तो आधिकारिक रूप से ये बांग्लादेश की मिल्कियत है। 12:01 पर इस पर भारत की प्रभुसत्ता में आ जाएगा, ये भारत की जमीन होगी। तो इसीलिए यहाँ पर चूंकि शोक चल रहा है राष्ट्रपति कलाम के देहांत की वजह से, फिर भी यहाँ पर एक झंडा रोहण, एक सादा सा समारोह होगा और सिंबॉलिक, उसके बाद उसे आधा झुका भी दिया जाएगा क्योंकि उनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और शोक का चूंकि समय है, तो इसलिए बस एक रस्मी अदायगी होगी और वो झंडा रोहण के बाद ये हो जाएगा यहाँ पर कि ये इस पर भारत की प्रभुसत्ता हो चुकी है, ये भारत का इलाका है और यहाँ के शहरी अब भारत के शहरी होंगे।
शकील साहब, थोड़ा सा और बताइए कि कुल मिलाकर, जैसे कि हम ये जानते हैं, कुल मिलाकर भारत की ओर से 111 जो सीमांत इनक्लेव हैं वो बांग्लादेश में जाएंगे, 51 भारत का हिस्सा बन जाएंगे और उसी में से एक हिस्से में इस समय आप खड़े हुए हैं। आपकी तमाम लोगों से बात हुई होगी, उन लोगों का क्या कहना है? क्या वर्षों पुरानी ये समस्या अब इस समाधान की तरफ बढ़ रही है? खुश होंगे?
देखिए, आप ये समझ लीजिए मोहनलाल के, मैंने यहाँ पर कई एनक्लेव का दौरा किया और वहाँ पर बहुत सारे जो नवयुवक थे, मैंने उनसे पूछा कि किस तरह की उन्हें खुशी है, तो उमूमन तो ये कहते कि उनके पास शब्द नहीं है और कई ने तो ये कहा कि हमें ये लग रहा है कि खासतौर से जो वृद्ध लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, कहीं वो खुशी से इसमें कुछ लोग कहीं देहांत ना हो जाए, तो इतनी खुशी यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। कह रहे हैं उन्हें यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि ये जो है उन्हें नागरिकता और राष्ट्रीयता मिल जाएगी। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण लम्हा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शकील अख्तर सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आज रात 12 बजे बांग्लादेश और भारत के 162 बस्तियों की अदला बदली होगी। पिछले 68 सालों से इन बस्तियों के लोग बिना किसी पहचान के जी रहे थे, यहाँ तक कि अस्पताल या स्कूल में दाखिले के लिए भी इन लोगों को अपने माता पिता या पति का नाम बदलना पड़ता था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के अंतर्गत बांग्लादेशी बस्ती मोशल दंगा का 5 साल का बच्चा जिहाद हुसैन ओबामा का जन्म से झूठा पिता माता बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। सुनिए जिहाद की कहानी बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली से।
बांग्लादेशी छीट महल मौशाल डांगा में मैं ढूंढने निकला था जिहाद को। लूडो खेलते हुए एक बच्चा और एक बूढ़ी को जिहाद का घर कहाँ है ये पूछा था मैंने। सब लोग जिहाद को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया बच्चा? अचानक वो घर की तरफ आते हुए दिखा, हाथ में एक खिलौना, शरीर में कोई शर्ट नहीं और पैर में धूल लगा हुआ है। उनकी माँ एक शर्ट पहना दी उनको। मैंने उनका नाम पूछा तो ये जवाब मिला,
जिहाद।
जिहाद
तो
वकी
इरकम नाम क्या
बंदु थुसे
वो बोल रहे थे, उनका नाम है जिहाद, जिहाद हुसैन ओबामा। मेरा प्रश्न था ये कैसा नाम है, गांव में किसी और का तो ऐसा नाम नहीं है, किसने रखा ये नाम? जिहाद ने बताया उनका एक दोस्त ने ये नाम रखा है। दोस्त का नाम है दीप्तिमान सेन गुप्ता, जो छीट महल आंदोलन के नेता है और जिनका उम्र है करीब 45 साल, वही जिहाद का दोस्त। इस नामकरण के पीछे एक कहानी है, एक लड़ाई की कहानी जो शुरू हुआ था जिहाद का माँ आसमा बीबी को जब प्रसव की पीड़ा होने लगा था।
खूब बेदना उठल तक हमें नहीं जाए, नहीं जा दिनहाटा हासपत्ले भर्ती कर।
आसमा बीबी बोल रही थी, पीड़ा शुरू होने के बाद उनको नजदीकी भारतीय शहर दिनहाटा का सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब पता पूछा तो आसमा ने छीट महल का ही पता बता दिया और अस्पताल के लोग उनको बोलने लगे कि उनकी प्रसव उस अस्पताल में नहीं हो सकता है क्योंकि वो बांग्लादेशी छीट महल का रहने वाली है। आसमा बीबी और उनके पति अड़े हुए थे कि अपनी असली नाम और पता इस्तेमाल करके ही बच्चे का जन्म देंगे, वो बोल रही थी आसमा बीबी। धीरे धीरे छिटमहलों से लोग जमा होने लगे अस्पताल में और डॉक्टरों पर दबाव डाला गया, पर अस्पताल से धमकी मिला कि अगर आसमा वहां से नहीं हटी तो गिरफ्तार करवा दिया जाएगा क्योंकि आसमा बांग्लादेश की नागरिक है और छिटमहलों के नागरिकों को भारत के अंदर आना गैरकानूनी है। पर सभी लोग आते जाते रहते हैं और पकड़े भी जाते हैं। कानून से बचने के लिए लोग अपनी पिता माता का नाम बदल देते हैं, जैसे किया था जिहाद का पिता शाहजान शेख ने।
बाबा का आवार नतुन साजाइसी आमार मामा के आमार मामी के मां साजाइसी तादेर परिचय पत्रे आमी स्कूले गेछि।
शाहजान बोल रहे थे कि वो जब स्कूल में दाखिल हुआ था तो अपनी मामा को पिता बनाया था और मामी को माँ, जो भारत के रहने वाले हैं। जिहाद का दो बड़े दादा दीदी का भी जन्म ऐसे ही हुआ था। शाहजान और आसमा उनके पिता माता नहीं है, पर्ची में ऐसे ही लिखा हुआ है शाहजान शेख का शब्द। आसमा बीबी बोल रही थी कि ये झूठ का सिलसिला वो खत्म करना चाहती
थी। तो कष्ट जंतना और কত করব কত মিথ্যা কথা বলবো সেই জন্য আর মিথ্যা কথা বলিনি বলছি যে
उनका प्रश्न था और कितने दिन झूठ का सहारे जिए वो और कितना कष्ट उठाए, इसलिए अब सच बोलने का निर्णय ली थी आसमा बीबी। हमसे बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद ही जिहाद भागने लगे, फिर जहां मंच बनाया गया औपचारिक अदला बदली के लिए, जिसके बाद से और किसी जिहाद का जन्म के लिए पिता माताओं को झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। स्कूल या कॉलेज में दाखिल होने के लिए बनावटी पिता माता का तलाश भी नहीं करना पड़ेगा।
तो आज रात भारत और बांग्लादेश एक नया इतिहास रचने वाले हैं।
बीबीसी इंडिया बोल। याकूब मेनन को फांसी पर उठे बवाल से एक बार फिर फांसी की सजा के औचित्य पर बहस ताजा हो गई है। ये सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत में मृत्युदंड के प्रावधान को क्यों न खत्म कर दिया जाए। दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने इस प्रावधान को खत्म कर दिया है, लेकिन फांसी के पक्षधरों का कहना है कि दंड का प्रावधान न्याय के लिए जरूरी है। आप क्या सोचते हैं? इस शनिवार 1 अगस्त को बीबीसी इंडिया बोल का यही है विषय। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लीबिया में अगवा किए गए चार भारतीयों में से दो को सुरक्षित सिर्त यूनिवर्सिटी ले आया गया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि दो भारतीयों की रिहाई के प्रयास जारी हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लक्ष्मीकांत और विजय कुमार की रिहाई पर ट्वीट करके खुशी जताई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सुबह इस बात की पुष्टि की थी कि लीबिया में चार भारतीयों का अपहरण कर लिया गया है। प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा था,
दो दिन पहले 29 जुलाई को लगभग 11 बजे रात त्रिपोली में हमारे मिशन को ये सूचना प्राप्त हुई कि त्रिपोली और ट्यूनिस के रास्ते से भारत के लिए लौट रहे चार भारतीय नागरिकों को सिर्त से 50 किलोमीटर दूर एक नाके पर हिरासत में ले लिया गया है। चार भारतीय नागरिकों में से दो हैदराबाद, एक रायचूर और एक बेंगलुरु के निवासी हैं। इनमें से तीन सिर्त विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और एक जुफरा में सिर्त विश्वविद्यालय शाखा में काम कर रहे थे। विदेश मंत्रालय त्रिपोली में अपने राजदूतावास के माध्यम से घटना की जानकारी प्राप्त कर रहा है। हमारे सूत्रों के माध्यम से उपलब्ध जानकारी के अनुसार सभी चार भारतीय नागरिकों को सिर्त शहर में वापस लाया गया है। हम संबंधित परिवारों के साथ नियमित रूप से संपर्क में हैं और चारों भारतीयों की कुशलता एवं शीघ्र रिहाई के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।
तो ये थे भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप, और ये जो बात उन्होंने कही थी सुबह कही थी, शाम खबर आई कि दो भारतीय रिहा हो गए हैं। सीधे चलते हैं बेंगलोर अपने सहयोगी इमरान कुरैशी के पास। इमरान, दो भारतीय जो रिहा हुए हैं वो कौन है, उनके बारे में बताइए।
ये एक है लक्ष्मीकांत, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चरर हैं उस यूनिवर्सिटी में, और दूसरे हैं विजय कुमार, जो विजय कुमार भी वहीं कुछ दूसरा काम करते हैं। तो लक्ष्मीकांत के फैमिली से, हमारी खानदान के उनके भाई से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि वो उनको लक्ष्मीकांत का जब अगवा हुआ तो उस टैक्सी ड्राइवर ने उन उनको वापस यूनिवर्सिटी वापस आके यूनिवर्सिटी के में जो उनके कोलीग्स हैं उनके साथ बात की, उनको बताया कि ऐसा अगवा हो गया है। तो और वहां से उनके कोई दोस्त, लक्ष्मीकांत के दोस्त ने उनके खानदान को रायचूर में टेलीफोन करके बताया कि ऐसा हो गया है।
बिल्कुल। तो ये बताइए कि ये तो इन लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है, परिवारजनों के लिए खुशी की बात है, जो बचे हुए दो लोग हैं ये कौन हैं?
ये आंध्र प्रदेश के हैं, हैदराबाद के हैं और आंध्र प्रदेश के हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हैं। वो दोनों उसी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे थे, बलराम और उनके साथी, और दोनों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उनका कहना है तो उनके उनके भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने गोपी कृष्णा से के भाई से, मुरली कृष्णा से, और उन्होंने कहा कि इन लोगों के वो गोपी कृष्णा करीब 8 साल से वहाँ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं।
हाँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही कोई अच्छा समाचार हमें कुछ देर बाद मिल जाएगा। इमरान कुरैशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हिंदी साहित्य के महान रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है, वही प्रेमचंद जिन्हें उनके कहानियों उपन्यासों के लिए याद किया जाता है। प्रेमचंद और उनके सफर पर आज की विवेचना।
दादी, सभी तो नए कपड़े पहन के जाएंगे ईदगाह में, और मैं वही पुराना फटा पजामा।
चिमटा वाला,
ये कितने का है?
ये टोपी
नहीं नहीं, ये चिमटा।
ये छोटे मियां, निकालो एक आना, ये लो चिमटा।
ईदगाह, एक ऐसी कहानी जिसे शायद सभी ने पढ़ा होगा। इस कहानी का पात्र है एक छोटा बच्चा हामिद, जो अपने हम उम्र साथियों की तरह खेल खिलौने गुड्डे गुड़ियों के प्रलोभन में नहीं फंसता और अपनी दादी के लिए मेले से एक चिमटा खरीद कर लाता है। मगर चिमटा ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि रोटियां सेकते वक्त उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। इस छोटी सी कहानी में लेखक प्रेमचंद ने हामिद से बड़ी बड़ी बातें कहलवा दी, वो बातें जो न सिर्फ पाठक के दिल को छू जाती हैं बल्कि पाठक उन्हें आत्मसात भी कर लेता है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है प्रेमचंद के इंसान के मनोविज्ञान को समझने वाले रचनाकार के रूप में। आजादी से पहले भारत के यथार्थ का जैसा चित्रण प्रेमचंद ने किया वैसा किसी अन्य लेखक के साहित्य में नहीं मिलता। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही ग्राम में हुआ था। पिता का नाम अजायब राय, पिता डाकखाने में मामूली नौकरी करते थे। प्रेमचंद के बचपन का नाम था धनपत राय। धनपत राय जब सिर्फ 15 साल के थे तो उनके पिता ने उनका विवाह करवा दिया। विवाह के साल भर बाद ही पिता का देहांत हो गया और अचानक पूरे घर का बोझ उन पर पड़ गया। एक साथ 5 लोगों का खर्चा। बचपन से ही प्रेमचंद को उर्दू आती थी। 13 साल की उम्र से प्रेमचंद ने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ नाटक लिखे और फिर बाद में उर्दू में उपन्यास लिखने शुरू किए। इस तरह से प्रेमचंद का साहित्यिक सफर शुरू हुआ। प्रेमचंद जिस तरह का साहित्य लिख रहे थे उसके पीछे की वजह उनकी पृष्ठभूमि और देश का औपनिवेशिक शासन था जिसे वो खुद जी रहे थे। उनके दिन पैसों की तंगी में बीत रहे थे। प्रेमचंद के पौत्र आलोक राय बताते हैं,
इसमें कोई संदेह नहीं है कि किल्लत थी, मतलब कि खाने के लाले पड़े थे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पैसे की कमी थी। और मेरे पिता बताया करते थे कि वो और उनके बड़े भाई दोनों को डाल दिया गया था। हमारे पिता तो रहे होंगे 13-14 साल के रहे होंगे जब प्रेमचंद गए हैं बम्बई, इन दोनों को यहाँ डाल दिया गया था इलाहाबाद में हॉस्टल में। बम्बई गए थे जैसे कि पूरब के मर्द अक्सर जाया करते हैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो वो भी वहां गए थे बम्बई में फिल्मों में काम करने के लिए। वो एक अलग प्रसंग है। तो यहाँ पे मेरे पिता और मेरे ताऊ दोनों, ये दोनों इलाहाबाद में हॉस्टल में डाल दिए गए थे, और ये हिदायत अपने बच्चों को भी दी थी कि आप बहुत अमीर बाप के बेटे नहीं हैं, ये खुशफहमी नहीं पालिएगा। तो बेहद शॉर्टेज का जमाना था, वो तो हमको याद है। और तो और जब मेरे पिता और मेरे ताऊ का एक इनफॉर्मल सा पार्टीशन हुआ था कि कुछ टाइटल्स तुम छापो, कुछ टाइटल्स हम छापेंगे वगैरह वगैरह, उस वक्त यानी शॉर्टेजेस थी।
हालांकि दूसरी शादी के बाद प्रेमचंद के जीवन की परिस्थितियां कुछ बदली। वो स्कूलों के डिप्टी इंस्पेक्टर बना दिए गए और इसी जमाने में 5 कहानियों का संग्रह छपा, नाम था सूज़े वतन। इसमें रचनाकार ने देश प्रेम और देश की जनता के दर्द को लिखा। अंग्रेज शासकों को इसमें बगावत की बू आने लगी। इस समय प्रेमचंद नवाब राय के नाम से लिखा करते थे, लिहाजा नवाब राय की खोज शुरू हुई। नवाब राय पकड़ लिए गए, उनके ही सामने इस कृति को अंग्रेजों ने जला दिया। बिना आज्ञा न लिखने का बंधन लगा दिया गया। इसके बाद धनपत राय नवाब राय नहीं बल्कि हमेशा के लिए प्रेमचंद बन गए, और ये नाम सुझाया उनके नजदीकी मुंशी दया नारायण निगम ने। कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। उन्होंने ही प्रेमचंद की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रकाशित की थी। अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्होंने एक उपन्यास लिखना शुरू किया, ये था मंगलसूत्र, पर ये कभी पूरा नहीं हो पाया। धन और परिवार का पालन पोषण करने के लिए प्रेमचंद अपनी किस्मत आजमाने 1934 में माया नगरी मुंबई जा पहुंचे। अजंता कंपनी में कहानी लेखक की नौकरी की, लेकिन साल भर का अनुबंध पूरा करने से पहले ही वो वापस लौट आए। हालांकि प्रेमचंद की कहानियों, उनके उपन्यासों पर कई फिल्में बनी, लेकिन जनता ने उनके साथ कभी भी न्याय नहीं किया। प्रेमचंद के उपन्यास या कहानी पर बनी अगर किसी फिल्म ने सफलता का मुंह देखा तो वो थी 1977 में बनी शतरंज के खिलाड़ी। इसके निर्देशक थे सत्यजीत रे।
इन बहादुर सिपह सालारों के हाथ तो देखिए, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली लड़ नहीं रहे, खेल रहे हैं। वो असली नहीं, अक्ल के घोड़े दौड़ाना पसंद करते हैं। तभी शतरंज जैसे पुराने और अजीम खेल को अपना मैदान बना रखा है।
तो सवाल यह है कि जो प्रेमचंद हिंदी साहित्य की दुनिया में कहानी और कथाकार के रूप में बड़ा नाम बन चुके थे, उनकी लिखी कहानियों और उपन्यासों पर बनी फिल्मों को जनता ने नकार क्यों दिया? मैंने भारतीय फिल्मों पर लिखने वाले साहित्यकार यतीन्द्र मिश्र से पूछा कि प्रेमचंद की कथा कहानियों पर कौन कौन सी फिल्में बनी।
तीन तो कहानियों पर फिल्में बनी हैं, जिनमें सदगति शतरंज के खिलाड़ी हिंदी में बनी, दोनों सत्यजीत रे ने बनाई, और कफन पे मृणाल सेन ने ओका ओरी कथा बनाई। तीन ये फिल्में हैं, और तीन उनके नॉवल पे बनी फिल्में हैं, जिनमें हम गोदान, गबन और हीरा मोती को याद कर सकते हैं। तो छह फिल्में बनी हैं, जिसमें एक बंगाली में है और पांच हिंदी में है। मुझे लगता है कि प्रेमचंद ने जिस समय सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ रुख किया था, उस समय तमाम और सारे बड़े लोग फिल्मों के लिए लिख रहे थे, और ये शायद एक वजह रही हो जिसने उनको इस बात के लिए, मतलब उनमें जोश दबारा हो कि ये एक बड़ा माध्यम है। क्योंकि ये पीरियड 1931 से 35 के बीच का है, जब साधन हसन मंटो, आगा हश्र कश्मीरी, मोहनलाल दवे, नारायण प्रसाद बेताब, जिया सरहदी जैसे लोग, वजाहत मिर्जा जैसे लोग फिल्मों के लिए लिख रहे थे। और उस जमाने में यहूदी की बेटी, देवी देवयानी, अछूत कन्या, किसान कन्या जैसी फिल्में बनी। तो अपने प्रेमचंद को भी फिल्म लिखने का मन हुआ, और उन्होंने मजदूर लिखी 34 में, लेकिन बहुत सफल नहीं हुए और सिनेमा का माध्यम रात नहीं आया। ये देखने वाली बात है कि प्रेमचंद जो साहित्य में बहुत लोकप्रिय रहे और जिनके साहित्य पर फिल्में बनी, उसको सिनेमा मीडियम ने अपनी तरह अंगीकार नहीं किया, बल्कि उनके साहित्य को अपनी तरह अंगीकार किया।
प्रेमचंद की रचनाओं में दलित हैं, किसान है, गरीबी और शोषण की दास्ता है, इसलिए लोगों ने प्रेमचंद की रचनाओं में वामपंथ से झुकाव को खोज लिया। प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही लिखने वाले उनके पुत्र अमृत राय से 1981 में बात की थी बीबीसी हिंदी सेवा के ओमकार नाथ श्रीवास्तव ने, और उनसे पूछा कि तमाम लोग उन्हें वामपंथी लेखक कहते हैं, तो इसका जवाब अमृत राय ने ये दिया था।
मैंने अपनी किताब कलम का सिपाही में ये बात लिखी है, जब उन्होंने 1919 में दयानारायण निगम को लिखा कि मैं तो बोल्शेविक उसूलों को मानने लगा हूँ, तो वहाँ पे मैंने लिखा है कि बातों के धांधे में मत आइए, वो बोल्शेविक वगैरह कुछ नहीं हो गए हैं, वो अपने ढंग से अपने मुहावरे में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो एक इनकलाब इसी धरती पर कहीं हुआ है, जिसमें कि हल इतने गहरे चला कि नीचे की ज़मीन ऊपर आ गई, और जिन लोगों से कोई तवक्को नहीं की जाती थी कि वो सिवाय बोझा ढोने के और कुएं से पानी निकालने के, जैसा अंग्रेजी वाला मुहावरा है, कभी राज भी कर सकते हैं, तो वो राज करने की स्थिति में आए हैं, इसका वो अभिनंदन कर रहे हैं ये कहकर कि मैं बोल्शेविक उसूलों का कायल हो गया हूँ। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है वो जमाना था जबकि उस इनकलाब की सही बात विश्व की जनता के पास तक पहुंचने भी नहीं पाती थी, लेकिन उस सबको चीरते हुए इस आदमी ने एक बुनियादी बात को पकड़ लिया। ये कहना तो गलत है कि प्रेमचंद वामपंथी लेखक है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके लेखन का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके भीतर से वही गूंजें निकलती हैं अन्याय, अन्यायी व्यवस्था के खिलाफ लोगों को सचेत करने की, जगाने की, जनता के भीतर जागृति लाने के लिए और उनको संघर्ष के लिए सन्नद्ध करने की।
भारत के ग्रामीण जीवन को प्रेमचंद ने आम लोगों की भाषा में बयां किया और गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, सेवा सदन, कायाकल्प, प्रतिज्ञा जैसे उपन्यासों और कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, घास वाली जैसी कई कहानियों में लिख डाला। लेकिन उस समय की जो समस्याएं थी वैसी तो आज भी है, तो फिर प्रेमचंद के बाद उस तरह के सामाजिक सरोकारों वाला लेखक क्यों नहीं मिलता? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पूर्व प्रोफेसर मैनेजर पांडे कहते हैं,
प्रेमचंद के उपन्यासों को घर की औरतें पढ़ती थी, दुकानदार पढ़ते थे, शहर के पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, हिंदू पढ़ते थे, मुसलमान पढ़ते थे, ईसाई पढ़ते थे, सिख भी पढ़ते थे। अब ऐसा कोई लेखक नहीं दिखाई देता जिसको इतने लोग पढ़ें। आज का हिंदी साहित्य शहरी मध्य वर्ग का साहित्य है, शहरी जीवन की आपाधापी और जो समस्याएं हैं उस पर लिखने वाले लोग ज़्यादा हैं। हाल के वर्षों में यह भी हुआ है हिंदी साहित्य में कि जो किसान जीवन पर लिखे उसको लोग पिछड़ा हुआ लेखक मानने लगे हैं। ऐसा प्रेमचंद के ज़माने में तो और भी नहीं था, क्योंकि प्रेमचंद के ज़माने में एक वैचारिक वातावरण भी था गांधीवाद का, जो गांव से बहुत जुड़ा हुआ था। आज के ज़माने में गांव की बात करने वाले न तो वैसा कोई विचारक है और न वैसा कोई लेखक है।
पर सवाल यह है कि एक ऐसे परिवार के लिए जिसे विरासत में प्रेमचंद जैसी शख्सियत मिली हो, उसके लिए जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना कितना कठिन काम है। प्रेमचंद के पौत्र आलोक राय,
प्रेमचंद का फिगर जैसे एक तरह से हावी भी रहता है, उपलब्ध भी रहता है हमेशा हर चीज में, और मेरे पिता का जो संबंध था प्रेमचंद की स्मृति से, छवि से, वो एक अजीब सा था। एक तरफ तो जाहिर स्नेह था, लेकिन बार बार और ये स्वर अक्सर सुनने में आता है उनकी बातचीत में कि यार ये आदमी हमें छोड़ता नहीं, इतनी बड़ी छाप थी। मेरे पिता जो के साथ तो जो बात थी कि यार ये मतलब हमारा अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व जो है वो कभी पहचाना नहीं जाता है, जा नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी छाया इस आदमी की है, इसी में जिएंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इस पीढ़ी तक आते आते तो हमको ये एहसास जरूर था कि यार कुछ कोई था जरूर हमारा पूर्वज।
ये थी मुंशी प्रेमचंद पर आज की विवेचना। और इससे पहले कि हम आपसे कार्यक्रम में विदा लें, मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। आज मध्यरात्रि को बांग्लादेश और भारत 162 एनक्लेव्स की अदला बदली करेंगे, जिससे दुनिया का सबसे जटिल सीमा विवाद खत्म हो जाएगा। भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि लीबिया में अगवा किए गए 4 भारतीयों में से 2 को सुरक्षित सिर्त यूनिवर्सिटी में लाया गया है। उत्तर पूर्वी नाइजीरिया में एक बम विस्फोट में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। जिम्बाब्वे ने अमरीका से उस डेंटिस्ट के प्रत्यर्पण की मांग की है जिस पर सीसिल नाम के मशहूर शेर को मारने का आरोप है। चाड की सेना का कहना है कि चाड झील के द्वीपों और आसपास के इलाके में पिछले 2 हफ्तों से हो रही लड़ाई में सेना ने चरमपंथी गुट बोको हराम के करीब 100 से ज़्यादा लड़ाकुओं को मार दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग को वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की तीसरी सभा दिनभर के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे हेमंत कुशवाहा। 9:30 बजे घटना चक्र में आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।